नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवोबो सुबियांतो से बातचीत की। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधारू सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। देशभर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला मौजूदा चैंपियन आयरना सबालेंका और मेडिसन कीज के बीच अब से कुछ ही देर बाद। अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया ने आज स्वास्थ्य सहयोग, परंपरागत चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीसरे भारत इंडोनेशिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई है। श्री मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में मिलकर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता से निपटने में सहयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों ने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। श्री मोदी ने कहा है कि रामायण और महाभारत से प्रेरित कथाएं और बाली यात्रा दोनों देशों के लोगों के बीच अनंत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा में उन्हें दिए गए अपार सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। श्री सुबियांतो ने कहा है कि उन्होंने साझा हितों के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें दोनों पक्ष सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर सुबियांतो ने इस बात पर जोर दिया कि इंडोनेशिया भारत का अपना घनिष्ठ मित्र मानता है और भारत इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। औपचारिक स्वागत के बाद श्री सुबियांतो ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इसका प्रसारण करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकाशवाणी का प्रतिष्ठित और चर्चित कार्यक्रम सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण आज रात 10 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के लिए कल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के लिए अच्छा काम करने वाले सम्मानित किए गए कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब समेत देशभर के 10,000 लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध युवा समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है और नई दिल्ली में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र अनूठा उदाहरण है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत में अब मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पद्धति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ये दिवस भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
इधर राजभवन ईटानगर में राज्यपाल सचिवालय में नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर थीम के तहत 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्यपाल के सचिव श्री दराडे शरद भास्कर ने अधिकारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री शाह ने कल 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में जीवंत गांवों से आए विशेष अतिथियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 662 जीवंत गांवों में 474 गांवों का ऑन ग्रिड विद्युतीकरण होगा और 127 गांवों का ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। श्री शाह ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्र समारोहों में इन लोगों को आमंत्रित करने से सरकार अंतर को पाट रही है और इनमें मुख्यधारा में ला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ज्वेल ओराम, किरेन रिजिजू और नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे।
4G कनेक्टिविटी के लिए 2025 जून तक 362 गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी, ये लक्ष्य लेकर हम चले। 662 गांव में से 474 गांव में ऑन ग्रिड और 127 गांव में ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन भी
हो। वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितता के मद्देनजर सहयोग बढ़ाने के आह्वान के साथ दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक संपन्न हो गई। समापन भाषण में मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रांड ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संघर्षों को समाप्त करने के तरीकों को खोजने जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्राथमिकताओं पर तत्काल ध्यान देने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि गोलीबारी के बाद आतंकवादी भाग गए। आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कठुआ जिले के बटोर पंचायत में सेना के अस्थायी शिविर के पास रात 1 बजे के बाद संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चलने पर जवानों ने उन पर गोलियां चलाई। इसके बाद आतंकवादियों ने भी गोलीबारी की। सेना ने घेराबंदी कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अब आगे ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में आयुष मंत्रालय श्रद्धालुओं और आगंतुकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 1,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आयुष सेवाओं का लाभ उठाया। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के अलग अलग इलाकों और अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शीतलहर का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में कल ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई। इसके अलावा कल तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सवालेंका का मुकाबला अमेरिकी की मेडिसन कीज के बीच हो रहा है। पुरुष डबल्स के फाइनल में आज ही ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी का सामना इटली की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।